धौला पुस्तक आठवी लेक्चर नंबर 19। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आनन्दाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् साहु वज्रायिरिये अरहन्ते वन्द्यूण सिद्धेवी जे पंचलोग वाले वो चंबंधस सामितम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इस षटखंडागम का यह तृतीय खंड है, इसका नाम है बंध स्वामित्व विचय, और यह आठवीं पुस्तक के अभी हम पृष्ठ संख्या 145 पर आ गए हैं। 145। मनुष्यों में बात हो रही थी ना, नहीं देव में, सॉरी देव में, मनुष्य की बात कल ही हो गई थी, देवों की बात चल रही थी। हाँ, वो तीर्थंकर प्रकृति की बात अभी पूछेंगे। 85 नंबर का सूत्र, तीर्थयर नाम कम्मस को बंधो को अबंधो। तीर्थंकर नाम कर्म का कौन बंधक है और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। असंजद सम्मा इट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा बंधा। अब देवों में तो एक चौथाई गुणस्थान है जहाँ तीर्थंकर प्रकृति बनती है, इसलिए असंयत समय दृष्टि देव बंधक है, ये बंधक है, शेष देव अबंधक है। 146 पृष्ठ पर आते हैं। यहाँ तीर्थंकर नाम कर्म के बंध उदय विच्छेद का विचार नहीं है, क्योंकि देवों में उसके उदय का अभाव है, इसी कारण वह परोदय से बनती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध निरंतर होता है, क्योंकि एक समय से उसके बंध विश्राम का अभाव है। ऐसे भी देवों में कभी वो तो सत्ता है और नहीं बांधा, ऐसा नहीं होगा जैसे नारक में होता है या मनुष्य में होता है, ऐसा उसमें नहीं होता। दर्शन विशुद्धता, लब्धि संवेग संपन्नता, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति, ये तीर्थंकर कर्म के विशेष प्रत्यय है, जो सूत्र 41 में विस्तार से कहा जा चुके हैं। शेष प्रत्यय सुगम है। मनुष्य गति से संयुक्त बंध होता है, क्योंकि जो चौथे गुणस्थान वाले तो देव मनुष्य गति बांधेंगे, देव है वो, देव स्वामी है। बंध अध्वान सुगम है, यहाँ बंध विनाश नहीं है। सादि व अध्रुव बंध होता है, क्योंकि अनादि व ध्रुव रूप से अवस्थित रहने के कारणों का अभाव है, वो कारणों को उनका हुआ, कारणों का करना। अब देवों में एक एक जुदे जुदे ग्रुप्स बना के बताएंगे। भवनवासीय वाणवेंतर ज्योतिषीय देवानम देवभंगो नवरी विशेषो तिथ्यरम नत्थी। भवनवासी वाणवेंतर और ज्योतिषी देवों की प्ररूपणा सामान्य देवों के समान है, विशेषता केवल यह है कि इन देवों के तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला कहो या समय दृष्टि कहो, इनमें उत्पन्न ही नहीं होता। इस देशामर्शक सूत्र के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती, यह प्रथम उच्चारणा से केवल बध्यमान प्रकृतियों का भेद ही कहा गया है। समचतुरस संस्थान, उपघात परघात उच्छ्वास, प्रत्येक शरीर, प्रशस्त विहायगति और सुस्वर नाम कर्म असंयत समय दृष्टिगुण स्थान में स्वोदय से ही बनते हैं। हाँ, नहीं, परंतु किसी का तो इसमें उदय नहीं है ना, विग्रह गति में, विग्रह गति में परोदय से कहेंगे। आपका कहना है अच्छा, असंयत समय दृष्टि गुण स्थान में स्वोदय से बनते हैं, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में उसके चौथा गुण स्थान नहीं है। अपर्याप्त अवस्था में स्वोदय परोदय है, और यहाँ चौथा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं है,
तो
हाँ उसमें स्वोदय से बंधेगा। बाकी तीसरे के लिए तो स्वोदय तो ठीक ही है, मगर ये चौथे की विशेषता है। वैकृत मिश्र और कारवाण प्रत्ययों को असंयत समय दृष्टि गुणस्थान में कम करना चाहिए, क्योंकि भवनवासी वान व्यंतर और ज्योतिष देवों में सम्यक दृष्टियों की उत्पत्ति का अभाव है, इसलिए उसमें अपर्याप्त अवस्था नहीं होगी उस गुणस्थान वाले को, इसीलिए वो दूसरी प्रकृतियां जो है वो परोदय से बनती है, ऐसा कहा था। यानी मिथ्या दृष्टि और सासाधन वालों को वो स्वोदय परोदय दोनों कहेंगे। अपर्याप्त अवस्था में जहाँ उदय नहीं है फिर भी बनती है इसलिए परोदय, और बाद में पर्याप्त होने पर स्वोदय में बनती है, ऐसा कहेंगे वो। पंचेंद्रिय जाति और त्रस नाम कर्म मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में सांतर बनते हैं, क्योंकि वो एकेंद्रिय जाति और स्थावर का भी बंध कर सकते हैं, इसलिए वहां सांतर कहेंगे, क्योंकि उक्त देवों के इस गुणस्थान में एकेंद्रिय जाति और स्थावर रूप प्रतिपक्ष प्रकृतियों की संभावना है, और अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटकर बनती रहती है। मनुष्य गति और मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी को मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि सांतर बांधते हैं। तिर्यंच गति और प्राज्ञान पूर्वी के साथ उसको सांतर कहेंगे। औदारिक शरीर अंगोपांग को मिथ्या दृष्टि सांतर बांधते हैं। मिथ्या दृष्टि सांतर बांधते इसलिए क्योंकि वो एक इंद्रिय का बंध करते हैं, तब अंगोपांग नहीं बंध रहा है। जब वो पंचेंद्रिय जाति का बंध करेंगे तो अंगोपांग बंधेगा, और सासाधन गुणस्थान से वो एक इंद्रिय के बंधे विच्छित्ति हुई है, इसलिए केवल मिथ्या दृष्टि को सांतर में लिया। यद्यपि बध्यमान प्रकृति भेद के साथ यह भेद भी है, तथापि देशामर्शक होने से वह सूत्र में नहीं कहा गया। यानी ये जो कोई डिफरेंसेस है वो तो बता चुके सूत्र में, केवल तीर्थंकर प्रकृति के बारे में जो डिफरेंस है उसी को बताया, परंतु ये भेद भी है। इसलिए शंकाकार पूछते, इस प्रकार के भेद के होने पर भी उसे न कहने वाले वाक्य का सूत्रत्व क्यों नहीं नष्ट होता? कहते सूत्र में नहीं कहा इसलिए उसका सूत्रपना ही नहीं रहेगा। कहते यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि देशामर्शक सूत्रों में इस प्रकार के स्वरूप का कोई विरोध नहीं है। पेज नंबर 147। जैसे हमने गुणस्थानों में सभी बंध वगैरह देखी थी बातें, उस पर प्रश्न पूछे गए थे, वैसे भी यहाँ मार्गणाओं में देवगति में हम देख रहे थे, और देवों के जो भेद है उसकी बात यहाँ चल रही है। 88 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे अभी हम। सोहम ईशान कप्पवास्य देवानम देव भंगो, सौधर्म ईशान कल्पवासी देवों की प्ररूपना सामान्य देवों के समान है। यानी उसमें तीर्थंकर प्रकृति भी बंधेगी, चौथे के साथ वहां उत्पन्न भी होगी, बाकी सभी बात सामान्य देवों के समान घटित होती है। इस सूत्र का अर्थ मिला 147 पेज। जिस प्रकार सामान्य देवों में सब प्रकृतियों की प्ररूपना की गई है, उसी प्रकार यहां भी प्ररूपना करना चाहिए। वो परूपना हुआ, प्र करना उसको। यह अर्पणा सूत्र देशामर्शक है, इसलिए इसके द्वारा सूचित अर्थ को कहते हैं। पंचेंद्रिय जाति और त्रस नाम कर्म को मिथ्या दृष्टि देव देवोघ में सांतर निरंतर बांधते। देखो क्या कहा, देवोघ है ना, देव इन जनरल, सामान्य देवों की जब बात करते हैं तब उसकी बात है। तो सांतर निरंतर क्यों कहा था पंचेंद्रिय जाति के लिए? क्योंकि सामान्य देवों में तो सभी भेद उसमें गर्भित है, तो सौधर्म तक के तो पंचेंद्रिय जाति एक इंद्रिय जाति को सांतर बांधते हैं, और सनत कुमार से ऊपर के देव पंचेंद्रिय जाति को ही निरंतर बांधे, उनकी अपेक्षा निरंतर कहा। तो कहते क्योंकि सनत कुमार आदि देवों में एक इंद्रिय और स्थावर प्रकृतियों के बंध का अभाव होने से निरंतर बंध पाया जाता है, परंतु यहाँ यानी सौधर्म ईशान में उन्हें सांतर ही बांधते हैं। कौन? मिथ्या दृष्टि देव सौधर्म ईशान वाले ही क्यों लगा? क्योंकि प्रतिपक्ष प्रकृतियों के सद्भाव की अपेक्षा, ये प्रतिपक्ष हुआ, प्रतिपक्ष करना, पेज नंबर 148 पर आना भी, उसकी अपेक्षा करके एक समय से बंद विश्राम देखा जाता है। जहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंद होता रहता है, इसकी या उसकी ऐसा कोई ना कोई, तो वहाँ एक समय में भी कभी बंद विच्छेद हो सकता है, नहीं तो अंतर्मूर्त तक तो बन सकती है, परंतु एक समय में भी रुक सकता है बंद, फिर दोबारा दूसरी, क्योंकि परिणाम चेंज हो जाते हैं, तो एक समय में बंद रुक कर फिर दूसरा प्रतिपक्ष का बंद हो सकता है। इस सौधर्म ईशान में बात चल रही है, हम 148 पर आ गए, पहली लाइन से पढ़ेंगे। मिथ्या दृष्टि और वो 147 पेज पर लास्ट में नीचे का पैराग्राफ लाइन है ना, प्रतिपक्ष हो ना, प्रतिपक्ष करना, और उसी पैराग्राफ में सेकंड लाइन है, प्ररूपणा के बदले परूपणा हुआ है, वो भी प्ररूपणा करना। पेज नंबर 147 लास्ट पैराग्राफ दूसरी लाइन में परूपणा हुआ है, वो प्ररूपणा लिखना, और अंतिम लाइन में प्रतिपक्ष हुआ, वो प्रतिपक्ष करना। वैसे 146 पर भी देखो, पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन है ना, दृढ़ रूप से अवस्थित रहने के कारणों का करना, कारणकों का हुआ ना, कारणों का अभाव है। पेज नंबर 146 पहला पैराग्राफ अंतिम पंक्ति, कारणकों का हुआ ना, वो कारणों का करना, कारणों का अभाव है। नहीं नहीं अभी आज ही हुआ ना, आज हमने 145 से शुरू किया था पढ़ना, अब आना 148 पेज पर। अब कहते हैं मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि मनुष्य गति द्विक को देवोघ में शांत निरंतर बांधते। देवोघ में सामान्य देवों की बात की तब, एक होता है ओग यानी सभी चारों गतियों की अपेक्षा, और देवोग कहने से देवों की, सामान्य से देवों की अपेक्षा, तो उसमें मनुष्य गति को सांतर निरंतर क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य गति और तिर्यंच गति प्रतिपक्ष कहाँ तक है? तो बारहवें तक, सहस्रार तक, और अनंत आदि में वो मनुष्य गति ही बनती है, वो अप्रतिपक्षी है, इसलिए उनकी अपेक्षा वहां निरंतर भी हो। फिर से देखो, मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि मनुष्य गति द्विक को देवोग में शांत निरंतर बांधते, क्योंकि शुक्ल लेशा वालों में मनुष्य वो श रह गया, और पहली लाइन में भी सासारण सम्मक दृष्टि हुए, दृष्टि करो, ध्रुव नीचे रू करना, मिथ्या दृष्टि का भी वो ध्रुव बराबर दिख नहीं रहा। तीसरी लाइन, शुक्ल लेशा वालों में मनुष्य गति द्विक का निरंतर बंध देखा जाता है, परंतु यहां सांतर बांधते हैं, यानी किसकी बात चल रही है? सौधर्म ईशान की, वो मनुष्य गति और तिर्यंच गति को अल्टरनेटली बांधेंगे, क्योंकि मनुष्य गति द्विक के निरंतर बंध के कारणों का अभाव है। वो निरंतर बंध किसको? देवों में शुक्ल लेशा वालों में बंध होता था, यहां ऐसा नहीं है, यहाँ तो पीतलेशा वाले है ये सब। औदारिक शरीर अंगोपांग को देवोग में मिथ्या दृष्टि शांत निरंतर बांधते। देखो क्या कहा, नीचे के देव, देवोग है ना, देव इन जनरल, उसमें शांतर भी कहा और निरंतर भी कहा। शांतर इसलिए कहा, जब एकेंद्रीय जाति बनती है नीचे के देवों को, तब अंगोपांग नहीं बनता, और जब पंचेंद्रीय जाति बांधते हैं तब अंगोपांग का बंध होता है, इसलिए वो बनती या नहीं बनती, इसलिए उसको सांतर कहा। परंतु सनत कुमार से लेकर ऊपर के सभी देव पंचेंद्रीय जाति हर समय बांध रहे, तो उनको औदारिक शरीर भी और अंगोपांग भी बंधेगा ही बंधेगा, इसलिए उनके लिए निरंतर कहेंगे। हलमी आई बात? तो कहते औदारिक शरीर अंगोपांग को देव ओग में, ने ओग की बात में, मिथ्या दृष्टि शांत निरंतर बांधते हैं। केवल मिथ्या दृष्टि को लिया, क्योंकि वहां पर भी सारे दूसरे गुणस्थान से लेकर वो तो एक इंद्रिय जाति का बंधन नहीं हो रहा है, तिरंज गति भी बंध रही है, मनुष्य गति अकेले नहीं बंध रही दूसरे गुणस्थान में, परंतु वह अंगोपांग बंध रहा है शांत निरंतर, क्योंकि सनत कुमार आदि देवों में निरंतर बंध पाया जाता है, परंतु यहाँ यहने सौधर्म ईशान में शांतर ही बांधते हैं, क्योंकि स्थावर बंध काल में अंगोपांग का बंधन नहीं होता, यानी एक इंद्रियों के कोई अंग उपांग नहीं होते। यानी हमें ऐसा लगता है ना, ये वृक्ष है, उसकी शाखा है, फल है, फूल है, उसके उपांग है कि नहीं? अरे यहाँ क्या कहा, अंगोपांग का उदय नहीं होता उनको, ये कोई उसके उपांग नहीं है, वो तो जुदे जुदे शिवों के शरीर जुड़े हैं वहां पर। नहीं समझे? समझ में? ये जैसे हाथ है, उंगली है, ऐसे पेड़ों के होते हैं क्या? हम कहेंगे है, पर वो पूरा स्कंद है, अनेक शरीरों का मिलकर बना हुआ स्कंद है। हाँ, उसमें एक एक में अनेक जीव है प्रत्येक शरीर ही, शरीर जुदा जुदा है, एक के साथ दूसरा जुड़ा जुड़कर हमको स्कंद दिख रहा है, नहीं है? हाँ, वो अनेक है जीव, असंख्यात संख्यात यथा योग्य हो सकते हैं, अभी वो तो केवल ही जाने, ऐसा है ना, परंतु वो एक नहीं है, ऐसा है, पूरे एक झाड़ एक जीव नहीं होता, हाँ अनेक जीव हो गए।
फूल में आप आम खाते हैं ना, तो आम में यानी एक झाड़ है वो पूरा एक जीव नहीं है, फूल पत्ते फल सब में असंख्यात अथवा असंख्यात जीव होंगे, इसलिए आपको मालूम है लीलोत्री नहीं खाते अष्टमी चतुर्दशी को, वो थोड़ा सा संयम रख।
केले के जीव, केले के झाड़ में एक ही जीव है पूरा झाड़,
ऐसा कहाँ लिखा, ऐसा कहते? अच्छा, प्रत्येक है, परंतु प्रत्येक शरीर के भी जुड़ सकते हैं, प्रत्येक शरीर मिलकर भी स्कंद हो सकता है,
ऐसा नहीं होगा।
देखो, एक जीव एक शरीर ऐसा, यानी वो कमल वगैरह बताते ना कहाँ, वो स्वयं ब्रह्मण द्वीप का, वहाँ हो सकता है, परंतु यहाँ के हर झाड़ ऐसा नहीं है। अब ये केले की बात हमने आज नहीं सुनी, ऐसा कभी सुना नहीं था, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उपांग है ही नहीं उसमें। अभी हम जो कहते हैं वो बात अलग है, जैसे हम लोग पूछते हैं हमको, किसान लोग कोई या खेती करने वाले, कि ये मादा पपया और ये तो नर पपया, इसे पपया में भी कहते हैं, अरे उसमें तो नपुंसक वेद का ही उदय है, वहाँ मादा और नर कुछ होता ही नहीं है। ये जो डिफरेंसेस ख्याल में आते हैं वो तो स्कंद के रूप से जो कुछ बाहरी चीजें देखकर उसको नाम दे दिया जाए। चतुर्थ तक तो सारे नपुंसक वेद ही होते हैं, उसमें स्त्री पुरुष के भेद ही नहीं है। देखो अभी यहाँ आगे बढ़ते, यानी वो प्रासुक बनाने की विधि जो चरणानुयोग में बताई है, तो फ्रूट को उसमें कम है, पत्तों में ज्यादा है, इसलिए पत्ते नहीं खाते फ्रूट खाते हैं इस तरह से, या वो उसको सुधार कर नमक मसाला डालकर उसको प्रासुक बनाने की विधि होती है। सचित्त को अचित्त बनाने की विधि है, उस पूर्वक उसको खा सकते हैं। सचित्त त्याग अलग बात है और लीलोत्री का त्याग अलग, इसमें भी डिफरेंसेस है, वो सारा अपने इसमें आता है ना, जीव कांड में हमने पढ़े थे और उसकी विधि भी बताई थी वहां पर। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज सब लोग आए, वो 84 लाख हम कब से रुके हैं, ये ऊपर की लाल पुस्तक देना मुझे, संयम प्रकाश नाम है ना, ये यहाँ प्रश्न आया था 84 लाख गुण कौन से होते हैं, हम 3-4 दिन से देख रहे, कोई ना कोई एब्सेंट रहता था इसलिए। देखो, अब संयम के भेद रूप 84 लाख उत्तर गुणों का खुलासा करते हैं। ये 18,000 शील के भेद भी यहाँ अलग रीति से बताई है कुछ। ठीक है, अभी हम यहाँ करते हैं 84,00,000 उत्तर गुण। देखो, हिंसा, असत्य, चोरी, अब पेज नंबर लिखना है। देखो पहले क्या कहते हैं कि ये 21 भेद पहले बताएंगे, वो 21 नाम आपको लिखना है तो लिखिए। हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह, ये तो 5 पाप हो गए ना। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, 9 हो गया। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर भय, अरति, रति और जुगुप्सा। फिर मन, वचन, काय, फिर मिथ्या दर्शन, फिर प्रमाद। जुगुप्सा के बाद मन, वचन, काय, मिथ्या दर्शन 17 नंबर पर, फिर प्रमाद, पैशून्य, अज्ञान और इंद्रियों का अनिग्रह। पैशून्य के बाद अज्ञान, इंद्रियों का अनिग्रह। तो देखो ये 21 भेद हुए पहले में पहले। अब उसके बाद इसको 4 दूसरे भेद कहेंगे, उससे गुणा करना। तो कौन से? वो अतिक्रम, व्यतिक्रम, उसका अर्थ बताएंगे अभी, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, इन 4 भेदों से गुणा करने पर 84 हो जाएंगे। हम कैसे देखते, प्रमाद की कैसे गिने हमने, 4 विकथा, 4 कषाय, तो गुणा करते गए ना, जितने अलग अलग जो भेद है उसको आपस में गुणा करने। पहले 21 बताए, फिर ये 4 बताए, अभी इसका भावार्थ बताते हैं 4 का। विषय की अभिलाषा को अतिक्रम कहते हैं, अर्थात विषयों के त्यागी संयमी के जो विषय सेवन की मन में इच्छा उत्पन्न होती है वह अतिक्रम दोष कहलाता है, क्योंकि उन्होंने त्याग किया है और अभी उसके वो उत्पन्न हुआ, वो अतिक्रम हुआ। अभी 1,000 नहीं हुए, अभी 84 हो गए, अभी तो 4 और 21 गुना हुए, 84 हो गए। अतिक्रम किसको कहा? जो विषयों का त्याग किया है ऐसे संयमियों के विषय सेवन के मन में इच्छा होती है वो तो अतिक्रम है। संयमी मुनि संघ को छोड़कर विषय के उपकरणों का संचय यानी साधनों का संचय करने लगता है, उसके व्यतिक्रम दोष उत्पन्न होता है। पहले तो मन में इच्छा उत्पन्न हुई, अब उसके उपकरणों का वो तो जुटाने लगे। जो व्रत में शिथिलता होती है यानी व्रत का कुछ अंश में भंग होता है उसे अतिचार कहते हैं, और व्रत के भंग को सर्वथा स्वच्छंद प्रवृत्ति करने को यानी व्रत का मूल नाश करने को अनाचार कहते हैं। अतिचार तो वो तो उसका वो तो बना रहेगा संयम, थोड़ा दोष लगता है, अनाचार यानी वो तो संयम ही छोड़ गया। हाँ, इन 4 दोषों से हिंसादि 21 भेदों को गुणा करने से 84 भेद हुए। यहाँ तक बात ख्याल में? अब आगे, अब ये 10 भेद कहेंगे, पृथ्वी का है, अप का है, तेज का है, वायु का है, प्रत्येक वनस्पति का है, साधारण वनस्पति का है, एक इंद्रियों के 6 भेद कर दिए, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये 10 भेद हो गए। और 10 भेदों को परस्पर में गुणा करने से 100 भेद होते हैं जीवों के, 10 × 10। इन 100 भेदों को पूर्वोक्त 84 भेदों से गुणा करने पर ये 10 भेद है साधारण और प्रत्येक वनस्पति का हो गए ना, और द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय, नेत्रस्काय के 4 भेद कर दिए। ये 10 भेदों को आपस में गुणा करने से 100 हो जाते हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन परमिट, कॉम्बिनेशन कर देना। हाँ, आगे बढ़े तो 84,000 होगा ना। यहाँ तक पहले 84 थे, सॉरी 84,100 हो गए, पहले 84 थे, उसको ये 100 से गुणा किया। अब शील विराधना के 10 भेद है, वो कौन कौन से है? तो स्त्रियों के साथ हास्य वार्तालाप आदि करना, पौष्टिक यानी इंद्रिय विकार जनक आहार करना, सुगंधित तेल इत्र आदि से तथा गुलाब चंपा आदि के पुष्पों से शरीर का संस्कार करना, कोमल सुखद शैया पर सोना, कोमल आसनों पर बैठना, कटक आदि आभूषण धारण करना, शरीर को सजाना, 10 भेद इतना ही लिखो अभी। सुंदर सुललित रागवर्धक राग रागनिया गाना व सारंगी हारमोनियम आदि बाजे बजाना व सुनना तथा नृत्य देखना या इनकी अभिलाषा रखना। अब उनके सामने क्या क्या महिलाएं श्रृंगार करके नाचती रहती है, रोज टीवी पर भी दिखाते हैं। हाँ? अरे मुनियों के सामने नाचते है कितने, वो धर्म के नाम पर चैनल चलते हैं ना, उस पर यही तो चलता रहता है। हाँ? या, हाँ अभी अभी चालू हो गया। ऐसा नहीं, वो आरती ले लेके उनके सामने डांस करती है। मुनियों की पूजा अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं, परंतु ये इस तरह से वो जिसको कहेंगे ना कि पूरा श्रृंगार करके नाचने की किसने बात है। अरे भक्ति से करना अलग बात है, भक्ति से उनको आरती उतारना बात अलग है, क्योंकि वो तो अर्घ्य में तो वो तो हो सकता है, परंतु ये क्या वो सब चल रहा है अभी, अभी उसकी बात ही नहीं। अभी देखो इसमें कितने दोष लगेंगे थे, देखो ये राग रागनिया गाना सारंगी हारमोनियम बाजे बजाना सुनना देखना या उनकी अभिलाषा रखना,
ये मुनि को दोष लगेगा उस, और
ये मुनियों की चल रही ना, वो 84,00,000 उत्तर 7 नंबर रुपए पैसे सोना आदि द्रव्यों से संपर्क रखना, खुशी लेने दुष्चरित्र मनुष्यों की संगति करना, 9 विषयों के पोषण करने के लिए राजादक की सेवा करना, 10 बिना प्रयोजन रात्रि में घूमना। ये 10 कारण शील के घातक आगम में निरूपण किए गए हैं। इन 10 भेदों से पूर्वोक्त 84,100 गुणा करने पर 84,000 भेद होते हैं। आगे आलोचना के 10 दोष बता रहे, आकंपित अनुमानित दृष्ट, अभी उसके अर्थ नहीं समझाए है सारे, पर आकंपित दूसरा है नाम, अनुमानित दृष्ट, ये मूलाचार वगैरह में मिलेगा सब, आकंपित अनुमानित, तीसरा है दृष्ट, चौथा है बादर, पांचवा है सूक्ष्म, छठा है प्रच्छन्न, सातवां है शब्दाकुलित, हाँ बोलो, हाँ देखो फिर पढ़ती हूँ मैं। ये जो आलोचना के 10 दोष बताए हैं, आकंपित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, यहाँ क्या 7 नंबर 2 बार हुआ है, 8 नंबर नहीं है, बहुजन, फिर अव्यक्त और तत्सेवी। आलोचना के ये 10 दोष है, इनका विशेष वर्णन तप आचार में कराए हैं, ये इन्होंने पूर्व में किया हुआ। तत्सेवी, तत्सेवी, अब ये 84,000 को 10 से गुणा करेंगे, 8,40,000 हो गए, और फिर उसके प्रायश्चित के 10 दोष उससे गुणा करेंगे तो 84,00,000 उत्तर गुण होते हैं, उत्तर गुणों के दोष होते हैं। ये तो सारे दोष गिनाए, और ये दोष नहीं होना उसको गुण कहेंगे। तो ये प्रायश्चित के 10 दोष बता रहे, आलोचन, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, व्युत्सर्ग, फिर तप, बाद में छेद, फिर मूल, उसके बाद परिहार, और फिर श्रद्धान। श्रद्धान इसका भी वो पहले वर्णन कर चुके थे, व्युत्सर्ग था ना, व्युत्सर्ग जिसको कहें, व्यू व्यू। तब ये प्रायश्चित के जो 8-10 भेद है दोषों के, नहीं, आलोचन, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक 4 हो गए, व्युत्सर्ग 5, छठा है तप, सातवां है छेद, आठवां मूल, नौवां परिहार और दसवां श्रद्धान। इसको उसको गुणा करेंगे 8,40,000 को तो 84,00,000 भेद होते हैं, दोषों के होते ये, और इन दोषों के विपरीत 84,00,000 उत्तर गुण होते हैं। यानी उसके सर जैसे हमने प्रमाद के भंग जोड़े थे ना, वैसे इसके सब भंग करना, एक एक नंबर से कौन से नंबर वाला कौन सा है वो सब उसमें आ जाएगी बात। अभी हम आते अपना विषय पर आते हैं, ये बीच में चर्चा चली थी कौन से हो गए, जरा उत्सुकता हो जाती है ना, ये बहुत बार पढ़ते फिर भी बाद में भूल जाते हैं। 89 सूत्र सनक पेज नंबर 148।
छठे में इतने दोष हो सकते हैं लिंग को भी, दोष मीन्स इच्छा पूर्वक नहीं होते पर,
अरे दोष है ही वहाँ पर उनके, इतने दोष हो सकते हैं वो मुनिपना ही नहीं रहेगा। अरे एट ए टाइम कौन सा होगा, उसमें से एक एक होगा ना, हर एक में से, जैसे हम प्रमाद के भेद गिनते हैं विकता में से एक, कषाय में से एक, वैसा होगा उसका एक एक प्रसर करना उसके।
नहीं नहीं वो तो मैं समझ गया,
वो तो क्या समझ गए, 84,00,000 थोड़ी है, ये दोष है, ये तो मुनिपना का भंग होता है उसमें। हाँ अतिचार आदि दोष लगते हैं, प्रायश्चित लेके उसको सुधारते, परंतु ये अलग अलग दोषों की बात है उसमें। देखो सनक कुमार पहुड़ी जाव सदर सहसार कप्पवासी देवाणम पढ़माए पुढ़विए नेरियाणम भंगो, सनत कुमार से लेकर शतार सहस्रार तक कल्पवासी देवों की प्ररूपणा प्रथम पृथ्वी के नारकियों के समान है, क्योंकि वहाँ एकेंद्रीय जाति नहीं बनती है, परंतु तिरंज गति मनुष्य गति दोनों भी बन सकती है, इसलिए उसके समान बताया। डिफरेंस क्या होगा? वहाँ नपुसक वेद का उदय है, प्रत्यय में उसको गिनेंगे।
यहाँ पे दो वेद,
यहाँ तो
नहीं, सॉरी, एक ही वेद
होगा, पुरुष वेद ही होगा, क्योंकि स्त्री वेदी वाले वो नीचे के कहलाते हैं, सौदर में ईशान में उत्पन्न होते हैं ना, वो देवियों को उसमें गिनेंगे, भले वो ऊपर जाके रहेगी बाद में। देखो सनत कुमार से लेकर बताए ना, शतार ससरा तक कल्पवासी देवों की प्ररूपणा प्रथम पृथ्वी के नारकियों के समान है। विशेष इतना है कि यहाँ पुरुष वेद का स्वोदय से बंध होता है। यहाँ कौन कौन से वेद बंधेंगे ब्रह्मा? बंध की बात पूछ रही हूं मैं। ये देव है, मिथ्या दृष्टि है ना, यहाँ पर कौन से वेद बांध सकते हैं? तीनों बांध सकते हैं। उदय यहाँ पुरुष वेद का है, इसलिए पुरुष वेद का स्वोदय से बंध है और अन्य दो वेदों का परोदय से है। ख्याल में आई बात? क्योंकि अन्य वेद के उदय का अभाव है। नपुसक वेद का प्रथम पृथ्वी में स्वोदय से बंध होता है। वो प्रथम पृथ्वी के साथ कंपैरिजन किया तो डिफरेंस क्या है वो बता रहे, परंतु यहाँ उसका परोदय से बंध होता है, यहाँ बंध होता है ना, क्यों हुआ ना, अरे मिथ्या दृष्टि है तो तीनों वेद में से किसी वेद को बांधेंगे। नहीं नहीं, अभी यहाँ तो एक इंद्रिय का बंध भी नहीं हो रहा है, सनत कुमार एक इंद्रिय का कहाँ हो रहा है, सौधर्म ईशान, हाँ यहाँ तो सनत कुमार की बात चल रही, परंतु वो पंचेंद्रियों के साथ मनुष्य तिरियंचों के साथ नपुसक वेद बांध के यहाँ आ सकते हैं। प्रत्ययों में नपुसक वेद को स्त्री वेद के साथ कम करना चाहिए, यानी दोनों वेद नहीं हो गए। सासादन सम्य दृष्टि गुण स्थान में यहाँ वैक्रिक मिश्र और कार्मण प्रत्ययों को जोड़ना चाहिए। देखो वहां सासादन के साथ कोई मरकर नरक में नहीं जाता था, उसके साथ कंपेयर करके हुए बता रहे, क्योंकि नारकी सासादन सम्य दृष्टियों में उनका अभाव है। किसका? वैक्रिक मिश्र और कार्मण का। पर यहाँ सासादन के साथ देवों में उत्पन्न हो सकते हैं, तो यहाँ कार्मण भी होगा, वैक्रिक मिश्र भी होगा। शतार सहस्रार कल्पवासी देवों में मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्य दृष्टि मनुष्य गति द्विक को सांतर निरंतर बांधते हैं, क्योंकि उन कल्पों के शुक्ल लेशा वाले देवों में, देखो ये सनत कुमार से लेकर सबकी बात की है, परंतु जो अंतिम उसमें से जो शतार सहस्रार वाले जो देव है, हाँ, तो उसमें कुछ देव शुक्ल लेशा वाले भी पाए जाते हैं वहां पर, इसलिए कहते उन कल्पों के शुक्ल लेशा वाले देव में, सभी नहीं, उसके पद्म वहां तक है, परंतु वहां कोई देव तो शुक्ल लेशा वाले भी पाए जाते हैं। पद्म लेशा का यह अंतिम स्थान है और शुक्ल लेशा यहीं से स्टार्ट होती है, तो उनमें मनुष्य गति द्विक को छोड़कर तिर्यक गति द्विक के बंध का अभाव है, उनकी अपेक्षा से उसको निरंतर भी कहेंगे। अब 149 पेज पर आते हैं, नया सूत्र। आनद से लेकर की बात होगी। आनद जाव नवगेवेज विमान वासीय देवेशु, वे रह गया, देसु हुआ है, देवेशु करना पुराने पुस्तकों में। पंच नाना वर्णीय, हाँ वे डालना। अब देखो यहाँ इनको अलग क्यों निकाला, आनंद से लेकर ऊपर सारे शुक्ल लेशा वाले है, परंतु नव गिरवेक तो चारों ही गुणस्थान है और ऊपर के देवों में अनुत्तर अनुदिश में तो चौथा ही गुणस्थान है, इसलिए इनका ये मिथ्या तो रहने पहले से लेकर चौथे तक बनते ऐसी कहेंगे, तो चौथे में जो जो बनती है उसको यहाँ इस लिस्ट में ले लिया। देखो, आनंद जाव नवगेवेज विमान वासीय देवेशु पंच नानावर्णीय छह दंशनावर्णीय सादा 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 साद चाहिए ना, नहीं साता साता ठीक है, बारस कसाय पुरी सवेद हस्सरदि अरदि सोग भय दुगुंछा मनुष्य गई पंचिंद्रिय जादि ओरालिय तेजा कमय शरीर समचौरस संठान ओरालिय शरीर अंगोवंग वज्रिस संगणन वर्ण गंधरस फास मनुष्य गई पावगाणो पूवे अगरुल उघाद परघाद उत्सास पसत्थ विहाय गई तस बादर पज्जत पत्ते शरीर थिर अथिर सुह असुह सुभग सुसर आदेज जस कीर्ति अजस कीर्ति निमिण उच्चागोद पंचअंतरायाणम को बंधो को अबंधो। अब इसका हिंदी पढ़ते हैं। आनत कल्प से लेकर नव ग्रहवेग तक विमानवासी देवों में पांच ज्ञानावर्णीय छह दर्शनावर्णीय साता व असाता वेदनीय बारह कषाय पुरुष वेद हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा जुगुप्सा व जुगुप्सा मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति औदारिक तेजस कार्मन शरीर समचतुर संस्थान औदारिक शरीर अंगोपा वज्रर्षभ सहनन वर्ण गंध रस स्पर्श मनुष्य गति प्राज्ञानो पूर्वी अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहाय गति त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग सुस्वर आदेय यश कीर्ति अयश कीर्ति निर्माण उच्च गोत्र और पांच अंतराय। इनका कौन बंधक और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। अब इसका उत्तर देंगे। मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव असंजद सम्माद इट्ठी बंधा एदे बंधा अबंधा नथी। मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्य दृष्टि तक बंधक हैं, ये बंधक है अबंधक नहीं है। इस सूत्र के द्वारा, वो द्वारा बराबर लिखना, एक मात्रा द्वा में एक्स्ट्रा हो गई, र को नहीं रही, उसके द्वारा सूचित अर्थों को कहते हैं। उसमें से सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। मनुष्य गति औदारिक शरीर अंगोपांग वज्रर्षभ सहनन, इसमें एक न एक्स्ट्रा हुआ है, मनुष्यानुपूर्वी और अयश कीर्ति, हमने देखा ना इसका उदय का अभाव है। इनका उदयाभाव होने से तुम बंदर उदय की कंपैरिजन नहीं कर सकते, और इन्हीं प्रकृतियों को बाद में वो कहेंगे परोदय से बनती है। तो इनका उदयाभाव होने से तथा शेष प्रकृतियों के उदय विच्छेद का अभाव होने से, क्योंकि उनकी विच्छेदी तो आगे किसी किसी की छठे गुणस्थान में किसी की कहाँ पर है, परंतु हाँ यहाँ तो उसका चार गुणस्थान ही है, इसलिए उदय विच्छेदी नहीं है। यहाँ बंध और उदय के पूर्व या पश्चात विच्छेद होने की परीक्षा नहीं की जाती है, उस संबंधी चर्चा नहीं करेंगे। अब पांच ज्ञानावर्णीय चार दर्शनावर्णीय पुरुष वेद पंचेंद्रिय जाति तेजस्व कार्मण शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श अगुरु लघु त्रस बादर पर्याप्त स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग आदेय यश कीर्ति निर्माण उच्च गोत्र और पांच अंतराय। इनका स्वोदय से ही बंध होता है, क्योंकि ये ध्रुवोदयी प्रकृतियां इन जीवों के लिए ध्रुवोदयी बताई है ना। क्योंकि यहाँ पुरुष वेद ही है, नीचे के द्वयों में स्त्री वेद भी होता था, और बाकी स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ ये ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं इस तरह से। और ये सुभग आदि देवों को तो इन्हीं का उदय होता है, इनके अपोजिट का उदय ही नहीं होता है। निद्रा प्रचला, सातावा असाता वेदनीय, बारह कषाय, हास्यरति अरतिशोक और भय जुगुप्सा, इनका स्वोदय परोदय से बंध होता है क्योंकि ये अध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। अध्रुव ने निद्रा प्रचला का उदय हो भी या नहीं भी हो ये भी संभव है, जागृत अवस्था में उसका उदय नहीं है फिर भी बनती है क्योंकि वो ध्रुव बंदी है। समचतुरस्र संस्थान, उपघात परघात उच्छ्वास, अभी ऐसी प्रकृतियां हैं कि अपर्याप्त अवस्था में उदय नहीं है तो वहां परोदय से बनती कहेंगे, बाद में तो इनका उदय है ही। फिर से पढ़ती हूँ। समचतुरस्र संस्थान, उपघात परघात उच्छ्वास, प्रशस्त विहाय गति, प्रत्येक शरीर और सुस्वर नाम कर्मों को, मिथ्या दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टि स्वोदय परोदय से बांधते हैं। तीसरे गुणस्थान को इसलिए छोड़ा कि उसकी अपर्याप्त अवस्था ही नहीं होती। सम्यक मिथ्या दृष्टि देव स्वोदय से ही बांधते हैं क्योंकि उनके अपर्याप्त काल का अभाव है। ये समझ में आ रही बात। मनुष्य गति, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्रर्षभ सहनन, मनुष्यानुपूर्वी और अयश कीर्ति का परोदय से ही बंद होता है। ऊपर बताया था ना उदय का, उसका उदय ही नहीं है इसलिए वो कंपैरिजन नहीं करते, ये बात ऊपर आई थी। अब कहते इनका जो बंद तो होता है, इनका उदय यहाँ नहीं होता तो परोदय से ही बंद होता है क्योंकि देवों में इन प्रकृतियों के बंदर उदय के एक साथ अस्तित्व का विरोध है। देखो देव गति के साथ यश कीर्ति और यश कीर्ति दोनों बंद रही थी, पर देवों में उदय तो यश कीर्ति का ही, अयश का उदय नहीं है, बंदी पड़ी है सत्ता में। आगे बढ़ते हैं। परोदय बताए ना क्यों प्रकृति बंदर उदय के एक साथ अस्तित्व का विरोध है। अब आगे पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कषाय, भय जुगुप्सा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक तेजस्व, कारवान शरीर। देखो ये लिस्ट ऐसी है कि इनका तो सतत बंद होगा, निरंतर बंद कहेंगे अभी आगे जाके। औदारिक तेजस कारमान शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग, वर्ण गंध रस स्पर्श, मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी, अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, निर्माण और पांच अंतराय, इनका निरंतर बंद होता है क्योंकि यहाँ यहाँ शब्द डाले ना, यहाँ ये प्रकृतियां ध्रुवबंदी है। हम ध्रुवबंदी में पंचेंद्रीय जाति को नहीं लेते परंतु ये जीव पंचेंद्रीय जाति का ही बंद कर रहे हैं, मनुष्य गति का ही बंद करेंगे इसलिए उनके लिए ये सब प्रकृतियां ध्रुवबंदी में निरंतर बंदी यानी ध्रुवबंदी में लिए। अब सातावा असाता वेदनिया, हास्यरति अरतिशोक, स्थिर स्थिर शुभ अशुभ, यश कीर्ति और अयश कीर्ति, इनका सांतर बंद होता है क्योंकि एक समय से इनका बंद विश्राम देखा जाता है। ये सब कैसे तो प्रतिपक्ष वाली है। पुरुष वेद, समचतुर संस्थान, वज्रशुभ सहनन, प्रशस्त व्याय गति, सुभग सुस्वर आदय और उच्च गोत्र, इनको मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि सांतर बांधते हैं क्योंकि एक समय से इनका बंद विश्राम पाया जाता है यानी उनके लिए वहां पर उनके प्रतिपक्ष का भी बंद होता है परंतु उसके प्रतिपक्ष की बंद विच्छित्ति होने पर आगे क्या लिखा, समय मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि इन्हें निरंतर बांधते हैं क्योंकि उनके प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध का अभाव है, उसकी बंध विच्छित्ति हो गई है। अब प्रत्यय बताएंगे, इन प्रकृतियों के प्रत्यय देवोघ प्रत्ययों के समान है। देवोघ ने सामान्य देवों के जो प्रत्यय बताए हैं, विशेषता केवल इतनी है कि सब जगह स्त्रीवेद प्रत्यय को कम करना चाहिए, जैसे नारकियों में हमने दो वेदों को कम करते गए हैं या अपर्याप्तों की बात की थी तभी नपुंसक वेद को अकेला रखा था। अब यहाँ ये सारे पुरुष है, सनत कुमार से लेकर, इसलिए स्त्री वेद वाला प्रत्यय है उसको कम कर देना। उक्त सब देव सब प्रकृतियों को मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि उन्हें अन्य गतियों के बंध का अभाव है। देव स्वामी है, बंध अध्वान और बंध विनष्ट स्थान सुगम है। पांच ज्ञानावर्ण्य, छह दर्शनावर्ण्य, बारह कषाय, बहि जुगुप्सा, तेजस कारमाण शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु उपघात निर्माण और पांच अंतराय, इनका मिथ्यादृष्टि गुण स्थान में चारों प्रकार का बंध होता है। यह ध्रुव बंदी होने से वो सादि भी अनादि भी ध्रुव भी अध्रुव, चार प्रकार का। अन्यत्र तीन प्रकार का बंध होता है। अन्यत्र का अर्थ क्या है? दूसरे तीसरे चौथे में, हाँ, क्योंकि वहां ध्रुव बंध का अभाव है। शेष प्रकृतियों का बंध सब गुण स्थानों में सादि व अध्रुव होता है, क्योंकि वे अध्रुव बंदी है। ये जो साता साता है, हसे रति अरति शोक वगैरह वगैरह, स्थिर अस्थिर वगैरह, ये जो प्रतिपक्ष वाली जो प्रकृतियां हैं अध्रुव बंदी है। अब आते हैं 152 प्रश्न पर। तुमने चौथे गुण स्थान तक बंधने वाली सब प्रकृतियां देखी, अब ये दूसरे गुण स्थान की जो बंध विच्छित होती उसको बताएंगे। यहाँ पर निद्दा निद्दा, पहला पहला, थीन गिद्धि, अनंतानुबंधी, कोध मान माया लोभ, इथिवेद, चौसंठान, चौसंगठन, अपसत्य विहाय गई, दुभग दुस्सर अनादेज्य, नीच गोदानम, को बंधो को अबंधो, किसको छोड़ा, अरे नरक गति दूसरे गुण स्थान बनती ही नहीं है। तीरंज गति, तीरंज गत्यानुपुरी, तीरंज आयु और उद्योत, चार को छोड़ा, इसलिए वो 31 ही हो गए इसके। देखो हिंदी में, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थान वृद्धि, अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लो, स्त्री वेद, चार संस्थान, चार सहनन, अप्रशस्त विवाह गति, दुर्भग दुस्वर अनादेय और नीच गोत्र। इनका कौन बंधक और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। देखो इन जनरल जब हम चारों गतियों की अपेक्षा बताई थी, तब यहाँ तीर्यंच गति संबंधी चार प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही थी, पर यह अनंत आदि देव इसको बांधते ही नहीं है, तो बंध विच्छित्ति होती है कहने का प्रयोजन ही नहीं है। बांधते ही नहीं तो विच्छित्ति काहे की, समझ में आई बात? इससे पहले से उसको ये उनके लिए इतनी प्रकृति, 21 प्रकृतियों का ही बंध विच्छेद होता है दूसरे गुणस्थान में। तो यह सूत्र सुगम है। मिच्छा इट्ठी शासन सम्मा इट्ठी बंधा, एदे बंधा अवशेषा बंधा, मिथ्या दृष्टि और शासादन समय दृष्टि बंधक है, ये बंधक है, शेष देव अबंधक है। इसका अर्थ कहते हैं, अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध और उदय दोनों साथ विच्छिन्न होते हैं, क्योंकि शासादन गुण स्थान में उन दोनों का विच्छेद देखा जाता है, बंध और उदय की विच्छित्ति एक साथ होती है। शेष प्रकृतियों के बंधोदय विच्छेद की परीक्षा नहीं है, क्योंकि यह उनके उदय का अभाव है, यानी स्त्यान वृद्धित्रिक का उदय का अभाव है, स्त्रीवेद का उदय का अभाव है, ये चार संस्थान सहनन उसका भी अभाव है, प्रशस्त विहागति दुर्भोग दूसरा अनादेय, ये सब इसका उदय का अभाव है, इसलिए उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अनंतानुबंधी चतुष्क का स्वोदय परोदय से बंध होता है, क्योंकि वे अध्रोदय, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ किसी का होगा उदय, परंतु बंधेगी सभी, इसलिए अपने उदय में भी बंधेगी, पर के उदय में भी बंधेगी। शेष प्रकृतियों का बंध परोदय से ही होता है। देखो स्त्यान वृद्धि वगैरह का तो उदय ही नहीं है, तो बिना उदय के ही बनती है, तो कहते परोदय से। क्योंकि यह उनके बंध के साथ उदय के अवस्थान का विरोध है। बाकी प्रकृतियां यहाँ उदय रूप ही नहीं है, फिर भी बनती है। स्थ्यांग वृद्धि त्रय और अनंतानुबंधी चतुष्क का निरंतर बंध होता है क्योंकि ध्रुवबंधी है। शेष प्रकृतियों का सांतर बंध होता है क्योंकि एक समय से उनका बंध विश्राम देखा जाता है। बाकी प्रकृतियां ने अभी हमने देखी ना ऊपर, वो प्रतिपक्ष वाली भी है, जैसे स्त्री वेदा है, चार संस्थान संगठन है, बाकी भी है। जब स्त्यांग वृद्धि त्रय ने हो गया क्या,
नहीं
निरंतर बंध होता हुआ था, और बाकी प्रकृतियों का सांतर बंध होता है क्योंकि एक समय से उनका बंध विश्राम देखा, यहाँ तक पढ़ा था। प्रत्यय प्ररूपणा सहस्रार देवों के समान है, यानी स्त्री वेद का उदय नहीं देना बाकी सब वेद। श्री नपुसक का वाहन तो छोड़ा ही था पहले से। उक्त सब देव सब प्रकृतियों को मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं, देव स्वामी है, बंध अध्वान और बंध विनष्ट स्थान सुगम है, क्योंकि पहले दो गुण स्थान वाले बांधते हैं ना। स्त्यांग वृद्धि त्रय और अनंतानुबंधी चतुष्क का मिथ्या दृष्टि के चारों प्रकार का बंध होता है। चारों प्रकार कौन से?
सादी
अनादि ध्रुव और अध्रुव। अन्यत्र दो प्रकार का बंध होता है, वहां अनादि और ध्रुव बंध का अभाव है। शेष प्रकृतियों का सादि व अध्रुव बंध होता है क्योंकि वे अध्रुवबंधी प्रकृतियां, जो ऑप्शनल है, प्रतिपक्ष वाली है, उसकी बात है। अब 153 पेज पर 94 नंबर का सूत्र। मिच्छत्थ नौ से वेद हुंड संठान असंपत्त सेवठ संगणन नामानम को बंधो को अबंधो। देखो सामान्य से देवों में एक इंद्रिय स्थावर आतप को भी लिया था, परंतु यहाँ उसका बंध ही नहीं है, तो उसको लेंगे भी नहीं यहाँ पर विच्छित्ति वाले प्रकरण में। तो इनका विच्छित्ति बंध है और विच्छित्ति पहले गुण स्थान में उसका। मिथ्यात्व नपुसक वेद हुंड संस्थान और असंप्राप्ता सुपाटिका सहन नाम कर्मों का कौन बंधक और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। मिच्छा इट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा बंधा, मिथ्या दृष्टि बंधक है, ये बंधक है, शेष देव अबंधक है। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, मिथ्यात्व का बंध और उदय दोनों साथ विच्छिन्न होते हैं। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में उन दोनों का अभाव देखा जाता है, अभाव यानी वो विच्छित्ति हो जाती दोनों की। शेष प्रकृतियों के बंधोदय विच्छेद की परीक्षा नहीं है। मनीषा बिन क्यों नहीं परीक्षा? शेष यानी कौन से रह गए अभी? नपुसक वेद हुंड संस्थान और संप्राप्त सुपाटी का सहन है, वो बंदर उदय की कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्रह्मा आप बताएंगे। उदय भी है और बंदर भी है, इनका उदय है क्या? हाँ उसका उदय ही नहीं है, तो हम उसका उदय और बंध की विच्छित्ति की कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये उसका रीजनिंग है। देखो यहाँ लिखा है ना, उसकी परीक्षा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ नियम से इनके उदय का अभाव है। ख्याल में आई बात? हाँ ऐसे किसी को भी नहीं होगा, कोई भी देव को नहीं होगा, परंतु यहाँ तो ऊपर के देवों की बात है, तो देवों में तो इसका उदय ही नहीं पाया जाता। अब मिथ्यात्व प्रकृति स्वोदय से बनती है, इसका कारण स्वभाव है, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय भी है और बंध भी है वहीं तक, तो स्वोदय से बनती है। शेष प्रकृतियां परोदय से बनती है क्योंकि यहाँ उदय नहीं है फिर भी बनती है, इसलिए इसको परोदय से बनती कहेंगे। मिथ्यात्व निरंतर बनती है क्योंकि ध्रुवबंधी है, और बाकी वेद संस्थान सहनन वगैरह वो तो उलट पुलट कर कोई बंधेगा। शेष प्रकृतियां सांतर बनती है क्योंकि वे अध्रुवबंधी है, प्रत्यय प्ररूपना सहस्रार देवों के प्रत्ययों के समान है, क्योंकि स्त्री वेद को वहां नहीं काउंट किया था, यहाँ पर भी नहीं लेना। वैसे सामान्य देवों में नपुंसक वेद को पहले से ही निकाल दिया। मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं क्योंकि उनके एक ही गति बनती है। देव स्वामी है, बंधाध्वान बंधध्वान हुआ है, बंधाध्वान और बंध विनष्ट स्थान सुगम है। मिथ्यात्व का बंध चारों प्रकार का है। पहले गुण स्थान वाला जो है सादी अनादि ध्रुव अध्रुव चार प्रकार का है, क्योंकि वो ध्रुव बंदी है। शेष प्रकृतियों का सादी व अध्रुव बंध होता है क्योंकि वो प्रतिपक्ष वाली है ना, यहाँ लिखा ना क्योंकि वे अध्रुव बंदी है। इसका अर्थ समझ में आ रहा है ना? क्यों मनीषा बे, क्या नहीं समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा क्या नहीं समझा? अध्रुवबंदी नहीं समझ में आया। अध्रुवबंदी का अर्थ ध्रुवबंदी जो हर समय चलता रहता है बंध उसका, उसको ध्रुवबंदी कहें। जब तक उसकी विच्छित्ति नहीं हुई वो बनती ही रहती, उसको ध्रुवबंदी कहें। जैसे ज्ञानावरण है वगैरह वगैरह दर्शनावरण, ऐसे मिथ्या तो भी ध्रुवबंदी है। बाकी कौन से संस्थान है, वेद है, सहनन है, वो तो प्रतिपक्ष उसका बंधेगा, तो उसको अध्रुवबंदी कहेंगे। ख्याल में आई बात? अब आयु की बात पूछ रहे हैं। वैसे मनुष्य गति के लिए तो चारों गति वाले चारों गुणस्थान वाले बनते कहा था, अब यहाँ आयु तीसरे गुणस्थान में नहीं बनती है, इसलिए उसका सूत्र अलग बनाया। पूछते हैं मनुष्य उस को बंधो को अबंधो, मनुष्य आयु का कौन बंधक और कौन अबंधक है? यह सूत्र सुगम है। और क्या डिफरेंस होगा? एक तो गुणस्थानों का डिफरेंस होगा, और डिफरेंस कहाँ होता है आयु में? वो निरंतर बंदी कहते, सादी अध्रुव कहते। प्रत्ययों में क्या विशेषता होती है हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके। प्रत्ययों में क्या विशेषता होगी बोलो?
होगा
वैकृत मिश्र और कारमाण, वो नहीं लेना यहाँ पर, क्योंकि उस अवस्था में किसी देव को आयु नहीं बनती है। समझ में? अंतिम छह महीने में बंधेगी, वहाँ ये वैकृत मिश्र और कारमाण नहीं पाया जाता। अब यहाँ पढ़ेंगे, देखो हम यहाँ लिखते हैं ना, मिच्छा इट्ठी शासन सम्मा इट्ठी असंजत सम्मा इट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा बंधा, यानी मिथ्या दृष्टि सासाधन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टि बंधक है। ये बंधक है, शेष देव अबंधक है। इसका अर्थ बंध और उदय के विच्छेद की परीक्षा यहाँ नहीं है, क्योंकि मनुष्यायु के उदय का देवों में अभाव है। देवों की देवायु का उदय है और बंध रही मनुष्यायु, तो उदय का अभाव है इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते। वह परोदय से बनती है क्योंकि यहाँ उसके बंध के साथ उदय के अवस्थान का विरोध है। निरंतर बंध होता है आयु में, हमेशा निरंतर लेते हैं क्योंकि एक समय से उसके बंध विश्राम का अभाव है। आयु कभी एक समय में बंधी और रुक गए ऐसा नहीं हो सकता। आयु अंतर्मूर्त तो बंधेगी बंधेगी। मिथ्या दृष्टि के 49 हमेशा हम कितने गिनते थे?
41 देवों में।
हाँ
देवों में 41 गिनते थे और
हाँ, देव,
देवों में
हाँ।
42 गिनते थे।
51
चार गले कर
अवधारिक अवधारिक मिश्र आहार वो नहीं होते ना, इसलिए हमने उसको मिथ्या दृष्टि वहाँ 55 के बदले में 55 गिने थे हमने सामान्य से, तो 55 हुए थे। अब 55 में से क्या निकालना है?
अवधारिक
अवधारिक मिश्र नपुसक वेद
निकालना है नीचे के जो
हाँ, अब यहाँ स्त्री वेद भी निकालना है
और यहाँ पे दो वैकृत मिश्र और कारमाण ये दोनों लिखा।
हाँ, मिथ्या दृष्टि के लिखा ना, मिथ्या दृष्टि के अभी आयु में है ना।
हाँ, तो
आयु में और दो
निकालना देना पड़ेगा,
इसलिए 49 हुए। 51
में से
दो कम, 51 में से दो कम। सांसाधन सम्यक दृष्टि के 44 और असंयत सम्यक दृष्टि के 40 प्रत्यय होते हैं, क्योंकि आयु का बंधन उनको वो वैकृत मिश्र कारमांड में होगा ही नहीं, इसलिए वो दो दो प्रत्यय कम करना। मनुष्य गति से संयुक्त बंध होता है, आयु मनुष्य गति के साथ बंधेगी। देव स्वामी है, बंध अध्वान और बंध विनष्ट स्थान सुगम है, सूत्र में बताया है। सादी और अध्रुव बंध होता है, क्योंकि वह अध्रुव बंधी प्रकृति है। अध्रुव बंधी में ऐसी प्रकृतियां गिनते हैं जो चारों आयु है, आहारद्विक है, तीर्थंकर है, आतप उद्योत है, परघात उच्छ्वास है, ये सब अप्रतिपक्ष वाली पर अध्रुव बंधी, और बाकी जो इक्का जो है वो सब प्रतिपक्ष वाली, वो 62 होगी टोटल। देखो अब यहाँ 98 सूत्र, तीर्थयर नाम कम्मस्य को बंधो को अबंधो, तीर्थंकर नाम कर्म का कौन बंधक और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। असंयत सम्मादिट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा बंधा, 155 पेज पर है। असंयत समय दृष्टि बंधक है, ये बंधक है, शेष देव अबंधक है, इसका अर्थ कहते हैं। बंदर उदय के विच्छेद का विचार यहाँ नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंदर उदय एक साथ हो ही नहीं सकता किसी भी गति में, क्योंकि सत और असत बंधोदय की समानता का विरोध है। सत और असत बंधोदय ने बंद सत है, तो यहाँ उदय असत है, ख्याल में है बात? बंद के साथ उदय का अभाव है, यहाँ परोदय से बंद होता है, अपने उदय में नहीं बनती इसलिए परोदय से बंद होता है, क्योंकि सर्वत्र तीर्थंकर कर्म के बंध और उदय के एक साथ रहने का विरोध है। ये तो सर्वत्र मनुष्यों में भी, देव में भी, नारकी में भी, सर्वत्र निरंतर बंद होता है, क्योंकि संख्यात आवली आदि काल के बिना एक समय से उसके बंद विश्राम का अभाव है। यानी जो तीर्थंकर की सत्ता वाला यहाँ आया है, वो तो जितनी लाइफ है उतने हर समय उसका बंध करता ही रहेगा। ये संख्या तावली वगैरह उन्होंने इन जनरल बात की, इसलिए कि मनुष्यों में ये हो सकता है कि उन्होंने बंध प्रारंभ किया और उपशम श्रेणी चढ़ी, एक समय में नहीं चढ़ेगा, वो भी अंतर्मूर तक तो उसका बंध करके फिर चढ़ेगा, इसलिए एक समय में कभी बंध नहीं रुकेगा उसका। इसके प्रत्यय देवोग प्रत्ययों के समान है, परंतु इसके उत्तरोत्तर प्रत्यय, देखो एक होते हैं मूल प्रत्यय जो हमने जो देखे थे, तो मिथ्या दृष्टि के चार है, यहाँ तो समय दृष्टि है, यहाँ तो तीन ले लेंगे। उसके उत्तर प्रत्यय कहे तो हम उसके जो सब जो जो असंयम वगैरह सब गिनते हैं, और उत्तरोत्तर प्रत्यय उसमें और जो विशेषताएं हैं, तो कौन से है? तीर्थंकर प्रकृति के लिए अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, लब्धि संवेग संपत्ति, दर्शन विशुद्धि और प्रवचन प्रभावनादिक है। हाँ, उसमें से ये लिया, परंतु जो मुनि संबंधी जो कुछ है वो यहाँ नहीं लिया, वो वैयावृत्त वगैरह जो अन्य जो इस देवों के इन देवों के जो इस देवों के इसका यानी तीर्थंकर प्रकृति का मनुष्य गति के संयुक्त तीर्थंकर प्रकृति का बंध, ये क्या इस देवों के इसका क्या है? इन देवों की चाहिए, परंतु आगे क्या लिखा है?
इसका भी निकालना चाहिए ना,
यानी मनुष्य गति से संयुक्त होता है बस, यानी इसका के बाद फिर तीर्थंकर प्रकृति का लिखने की जरूरत नहीं थी।
इसका निकाल दो तो बराबर हो जाएगा,
ऊपर तो केवल मनुष्य गति संयुक्त तो बंधो इतना ही कहा था। इन देवों के मनुष्य गति से संयुक्त तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। देव स्वामी है, बंध अध्वान और बंध विनष्ट स्थान सुगम है। साधी अध्रुव बंध होता है क्योंकि वह अध्रुवबंधी प्रकृति है। अध्रुवबंधी के लिए सूची में इसको गिना है। अब ऊपर के देवों की बात है, वहां तो चौथा ही गुण स्थान है। अनुदिश जाव सवट्ठ सिद्धि विमानवासीय देवेशु पंच नाना वर्णीय छह दंशना वर्णीय सादा साद, यहाँ साद लिखा, वहां सादा सादा लिखा था ना, बारस कसाय पुरी सवेद हस्यरदि अरदि सोग भय दुगुंछा मनुष्यऊ मनुष्य गई पंचेन्द्रिय जादि ओरालिय तेजा कम्मय शरीर समचौरस संठान ओरालिय शरीर अंगोवंग वज्जरिस संगढ़न वर्ण गंधरस फास मनुष्य गई पावगान पूर्वी अगुरु अलघु उवघाद परघाद उत्सास पसत्थ विहाय गई तस बादर पंजत पत्ते शरीर थिर थिर सुह सुह सुभग सुसर आदेज जस कित्ति अजस कित्ति निमिण तिथयर उच्चागोद पंचंतर्यानम को बंधो को अबंधो। देखो अन्य देवों में तो आयु को अलग निकाला था, यहाँ आयु को भी लिया क्योंकि एक ही गुण स्थान है, उसके बंधक तो वही है। अब इसको हिंदी में पढ़ेंगे। अनुदिशों से लेकर सर्वा सिद्धि तक के विमानवासी देवों में पांच ज्ञानावर्णीय छह दर्शनावर्णीय साता वासाता वेदनीय बारह कषाय पुरुष वेद हास्यरति अरति शोक भय द्विपसा मनुष्यायु मनुष्य गति पंचेन्द्रिय जाति औदारिक तेजस्व कारमान शरीर समचतुरस संस्थान औदारिक शरीर अंगोपांग वज्रषभ सहनन वर्ण गंध रस स्पर्श मनुष्य गति प्राज्ञानु पूर्वी अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त व्यागति त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर स्थिर शुभ शुभ सुभग सुस्वर आदेय यश कीर्ति अयश कीर्ति निर्माण तीर्थंकर उच्च गोत्र और पांच अंतराय। इनका कौन बंधक और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। असंयत सम्मादिट्ठी बंधा अबंधा नथी, असंयत समय दृष्टि बंधक है अबंधक नहीं है क्योंकि सारे चौथे गुण स्थान वाले हैं। इसके अर्थ की प्ररूपना करते हैं। अभी जो उदय रूप नहीं प्रकृतियां कहेंगे उसका उदय और बंधक की कंपैरिजन नहीं कर सकते, है ना। मनुष्यायु मनुष्य गति औदारिक शरीर अंगोपांग वज्रषभ सहनन मनुष्य गति प्राज्ञानु पूर्वी अयश कीर्ति और तीर्थंकर, इनके उदय का अभाव होने से तथा शेष प्रकृतियों के उदय विच्छेद का अभाव होने से, यानी इनके तो उदय नहीं है और अन्य प्रकृतियां उदय रूप है परंतु उसका विच्छेद नहीं है। बंध से उदय का क्या पूर्व में या क्या पश्चात उच्छेद होता है, इस प्रकार की यहाँ परीक्षा नहीं है, यहाँ नहीं इन देवों में। पांच ज्ञानावर्णीय चार दर्शनावर्णीय पुरुष वेद पंचेन्द्रिय जाति तेजस्व कारमान शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श अगुरु लघु त्रस बादर पर्याप्त स्थिर स्थिर शुभ शुभ सुभग आदेय यश कीर्ति निर्माण उच्च गोत्र और पांच अंतराय। इनका स्वोदय बंध होता है क्योंकि ये यहाँ ध्रुवोदयी है, यहाँ के लिए वो ध्रुवोदयी कहेंगे क्योंकि इनके देवो देव है, यहाँ के शुभ आदय यश कीर्ति इन्हीं का उदय होगा। निद्रा प्रचला, अब ये स्वोदय परोदय दोनों में बनती है ना, साता व असाता वेदनिया बारह कषाय हास्यरति अरति शोक भय जुगुप्सा का, ये बारह और कषाय के बीच में कॉमा नहीं चाहिए। स्वोदय परोदय से स्वादेय हुआ है, वो स्वोदय करना, स्वोदय परोदय से बंध होता है क्योंकि ये अध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। क्योंकि निद्रा प्रज्वला का उदय हो भी या नहीं भी हो फिर भी वो बनती रहती है। साता असाता का भी देखो, इनको इन देवों को भी साता और असाता वो चेंज होता है, उनका ध्रुव उदय किसी का नहीं है। ये सर्वार सिद्धि के भी हो गए, उनके भी साता और असाता जो जिस प्रमाण में है वो उसका उदय पलटता रहता है। ये सबको ध्रुव उदय कहा ना, परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहाय गति और सुस्वर का स्वोदय परोदय से बंद होता है। यहाँ जो पूछे गई प्रकृति उन्हें से हमको कहना है, क्योंकि अपर्याप्त काल में उदय का अभाव होने पर भी इनका बंध पाया जाता है, उसका कारण है। विग्रह गति में उसका उदय नहीं है, परघात तो वो तो मिश्र शरीर अवस्था में भी उसका उदय नहीं है। शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर परघात का उदय चालू हो जाता है, प्रशस्त विहाय गति का भी। और उच्छ्वास सुस्वर अपने अपने जगह है। समचतुरस संस्थान उपघात और प्रत्येक शरीर का भी स्वोदय परोदय से बंद होता है, क्योंकि विग्रह गति में उदय के अभाव के होने पर भी बंध देखा जाता है। मनुष्यायु मनुष्य गति औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग वज्रशभ सहनन मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी अयश कीर्ति और तीर्थंकर का परोदय से बंद होता है, क्योंकि यहाँ उनके उदय का अभाव है। अब शांत निरंतर की बात करेंगे। पांच ज्ञानावर्णीय, छह दर्शनावर्णीय, बारह कषाय, पुरुष वेद, भय जुगुप्सा, मनुष्यायु मनुष्य गति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक तेजस्व कारमान शरीर, समचतुरस संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्रशव सहनन, वर्ण गंध रस स्पर्श, मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी, अगुरु लघु उपघात, ये उपघात दो बार लिखा है वो एक निकाल लो, अगुरु लघु उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहाय गति, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, सुभग सुस्वर आदेय निर्माण, तीर्थंकर उच्च गोत्र और पांच अंतराय, इनका निरंतर बंध होता है। क्योंकि इनके एक समय से बंध विश्राम का अभाव है, क्योंकि उनके कोई कुछ तो ध्रुव बंदी है और कुछ तो वहां पर प्रतिपक्ष नहीं है, यही बनती है, चौथा गुण स्थान है, इसलिए बंद एक समय से बंद रुकेगा नहीं। आयु कभी कभी बनती है परंतु अंतर्मूर्त बंधेगी, इसलिए उसको भी यहाँ निरंतर में लिया। साता व असाता वेदनीय, हास्य रति अरति शोक, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, यश कीर्ति और अयश कीर्ति, इनका सांतर बंध होता है, क्योंकि एक समय से इनका बंध विश्राम है, प्रतिपक्ष होती है और एक समय में रुक भी सकती है। यहाँ असंयत समय दृष्टि गुणस्थान में एक ही गुणस्थान है उनका, 42 प्रत्यय होते हैं, क्योंकि ओग प्रत्ययों में से हमने ओग में 46 देखे थे चौथे गुणस्थान में, औदारिक द्विक, स्त्रीवेद और नपुसक वेद प्रत्ययों का अभाव है। शेष प्रत्यय प्ररूपणा ना करना सुगम है। इन प्रकृतियों का बंध मनुष्य गति से संयुक्त होता है, देव स्वामी है, बंध अध्वान सुगम है, बंध विनाश यहाँ है नहीं, क्योंकि चौथा ही गुणस्थान है और कोई बंध की उच्चित्ति इनमें से किसी की है नहीं। पांच ज्ञानावर्णीय, छह दर्शनावर्णीय, बारह कषाय, भय जुगुप्सा, तेजस्व कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु उपघात निर्माण और पांच अंतराय, इनका तीन प्रकार का बंध होता है। यानी ध्रुव बंध यहाँ नहीं होगा, क्योंकि कोई अभव्य यहाँ आ नहीं सकते हैं, क्योंकि ध्रुव बंध का अभाव है। शेष प्रकृतियों का सादिव अध्रुव बंध होता है। क्योंकि वे अध्रुवबंधी हैं। देखो जो ये पांच ज्ञानावरणी वगैरह तीन कौन से लेना, सादी अनादि और अध्रुव। सादी कैसे कहा कि जो उपशम श्रेणी उतर के कभी आया है और यहाँ आए हैं उनके लिए वो सादी कहलाएगा। शेष प्रकृतियों का सादी व अध्रुव बंध होता है क्योंकि वे अध्रुव बंदी हैं। अब यहीं रुकेंगे हम। क्या क्या क्या
अगुर लोग उपघात या परघात छोड़ा है यहाँ पे?
परघात वो शेष में आ गया। परघात ऐसे भी
यहाँ तो निरंतर बनती है ना, और तीन प्रकार का बंध है
वो अध्रुव बंदी है। नहीं समझे। चौथे उन्नस्थान में आने के पहले पूर्व में उन्होंने बंध का भी शुरुआत की थी ना, ख्याल में है ना? प्रकृति अध्रुवबंधी है वो, यहाँ उनके लिए भले उसका ध्रुवबंध चलता होगा उसकी बात नहीं हो रही। अभी इंद्रिय मार्गना कल वहां से शुरू करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मयंक भाई।